दुनिया भर में, कल की बात बोल रहे हैं, दुनिया भर में रामचंद्र जी की जीवनी अच्छी है, उनका रूप भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, तो उन्हीं की जीवनी, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के नाम का प्रचार करना, प्रचार चाहना चाहिए। रामचंद्र जी की जीवनी, कृष्णचंद्र जी की गीता और विष्णु भगवान का ध्यान स्वरूप, इनका प्रचार होना चाहिए। महापुरुष की दृष्टि दुनिया की दृष्टि जैसी दिखती है पर रहती नहीं, उनकी अलग ही दृष्टि है। महापुरुष जो कहता है वो दुनिया की दृष्टि से कहता है, नाम जप करते हैं तो उसमें जल्दी 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 जप करने से जप छूट जाता है। नाम को ले ओ पर ध्यान को साथ में रखो। जैसे खेत में अनाज बोवे तो कायदे से उसमें हल्के द्वारा बीज जाना चाहिए, ऐसे ही फेंके आओगे कैसे फलेगा। अच्छी तरह से बो, हल्के साथ में जाओ तो अच्छी उपज होती है। शास्त्रों के सिद्धांत आवे तो मर्यादा में चलो। कोई भी काम करना हो तो सोचो कि यहां रामचंद्र जी होते तो क्या करते हैं। आपके मन में अपने आप मर्यादा की बात पैदा हो जाएगी। भगवान रामचंद्र जी में कोई दोष निकाल नहीं सकता। रामचंद्र जी की जीवनी कब समझ में आती है, पहले गीता का उपदेश ग्रहण करो। दूसरे नंबर में रामचंद्र जी का उपदेश ग्रहण करो, तब उनकी मर्यादा समझ में आएगी। स्वरूप विष्णु भगवान का दिव्य है। ये बातें हमने आपको बहुत रहस्य की बताई है। रामचंद्र जी का मर्यादा पूर्ण जीवन, कृष्ण भगवान की गीता का उपदेश और विष्णु भगवान का स्वरूप, ये हमने आपको बहुत गहरी बात बताई है। संसार में जो भगवान के भक्त हैं उसके लिए तो सब ठीक ही है। भगवान जहां भी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं वहां कहीं कहीं पोशाक में और श्रृंगार में फर्क हो सकता है। क्या कितनी गूढ़ बात कही है, हम लोग समझे तब तो, नहीं समझे तो क्या है। भगवान जहां भी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं वहां पोशाक श्रृंगार में फर्क हो सकता है, परंतु रूप वही है और हर जगह रहता है। आप लोग सत्संग में जाओ तो जाने से पहले एक काम करना चाहिए, अपना मन, अपना तन, अपना धन सब परमात्मा को अर्पण कर दो। न मेरा शरीर है, न मेरा मन है, न मेरा धन है। इससे आपके तन में कोई क्षति होने वाली नहीं, धन में कोई क्षति होने वाली नहीं, और मन में भी कोई कमी आने वाली नहीं। तन मन धन में कोई क्षति नहीं होगी, बहुत लाभ होगा। आप सुनते तो हो पर इसको काम में लेने के लिए जोश आना चाहिए। दूसरी और रहस्य की बात बोलते हैं। ये जो संसार है ये भगवान की लीला के अलावा कुछ नहीं है। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भगवान की लीला के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये जो आपको भगवान की लीला देख देख कर चिंता होती है, भय होता है, दुख उठाते हो, कोई मर गया तो रोते हो, कभी कुछ अच्छा मिल गया तो हर्ष करते हो, राजी होते हो, यही तो मूर्खता के लक्षण है। मूर्खता कोई पदार्थ नहीं है। आप में जो अनजानपना है यही मूर्खता है। मूर्खता को हटाओ, जब आपको ये पता है कि शरीर भी मरेगा, हमारे कुटुंबी भी मरेंगे, हमारा धन के साथ वियोग होगा, ये हमसे जाएगा, ये जब मालूम है तो दुख पाने के लिए आप जान जान करके मूर्ख क्यों बनो? पहले तो आप मूर्ख जानते हो फिर मूर्ख बनो, और मूर्ख बन करके फिर चिंता शोक हर्ष और शोक हो, इससे आपको फायदा क्या मिला? न परमात्मा की तरफ चलने में फायदा है, न लौकिक दृष्टि से कोई फायदा है। चिंता का फल तो सिवाय कष्ट के और दूसरा कुछ मिलने वाला ही नहीं है। मरने से डरते हो क्यों भाई? यहां भय की क्या बात है? भय नाम की कोई चीज है ही नहीं। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मरना तो पड़ेगा ही। आप भी मरोगे, आपका कुटुंबी भी मरेगा, यही बहुसागर है। बहुसागर कोई पानी का भरावा थोड़ा ही है। आपने अपने जीवन को चिंतामय बना लिया, ये चिंता सागर, दुख सागर, यही सागर है, यही बहुसागर है, इससे तिर जाओ। परमात्मा की इच्छा से अनिच्छा से जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा बैठा मिल जाए उसमें खुश रहो। जब आप खुश नहीं रह सकते हो, दुखी होते हो, तो उसकी जगह सुखी क्यों नहीं हो जाओ? ये तो आपके हाथ की बात है। भगवान ने आपको जो परिस्थिति दी है वो खुश रहने के लिए नहीं दी है, तो दुख होने के लिए भी नहीं दी है, फिर क्यों खुश हो और क्यों दुख हो? भगवान के भेजे हुए उद्धव जी आए तो गोप गोपियां कैसे खुश हो रहे थे? खेल में सब प्रकार के स्वांग बनकर आते हैं तो देखने वाले खूब खुश होते हैं, नाचने वाले भी खुश होते हैं। ये संसार तो खेल है, भगवान नाच रहे हैं। आप ये संसार का बाहरी रूप क्यों देखते हो? इसके भीतर भगवान को देखो। नाटक में राजा स्वांग करता है, आज्ञा देता है और अपने हाथ में तलवार लेकर कहता है, मेरी बात जो नहीं मानेगा मैं उसका सिर धड़ से उतार दूंगा। ये नाटक देखते हुए आपके मन में क्या जस्ती है कि सिर उतार देगा? आपके मन में यही आएगा कि नहीं, तलवार का स्पर्श किया है, ऐसी गिरा है, कोई मारा नहीं गया है, ऐसी समझोगी भगवान शामिल होकर लीला कर रहे हैं। भगवान मृत्यु के रूप में आए, चाहे हमारे शरीर में आए, चाहे और के शरीर में आए, देख देख कर मुस्कुराते रहो, वाह खूब लीला करते हो, आजकल तो बहुत अच्छी लीला करने लग गए। अरे भगवान आप तो ऐसी लीला करते हो पता ही नहीं चलता है, वाह वाह संसार के रूप में बड़े अच्छे लगे आप, कैसे निराकार से साकार हो गए, कैसे आप माया से रहित होकर माया के अंदर दिखने लग गए, कैसे आप अदृश्य होकर साकार हो गए। ऐसे देख देख करके भगवान को कहना चाहिए कि आप खूब लीला करते हो, हम समझ रहे हैं, हम आपकी लीला समझ रहे हैं, करना तो ये चाहिए, और उल्टा रोते हैं। भगवान की लीला में रो क्यों, रोना मूर्खता है। भगवान की लीला में जब भगवान पर आफत आए रोने में आनंद है, लेकिन अपने जीवन में जो भगवान लीला करते हैं उसमें रोना मूर्खता है। नाटक में सीता जी का हरण हो गया, राम जी रोते हैं, अपने को भी रोना चाहिए, उस रोने में आनंद है। पर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए तो रोना मूर्खता है। चिंता उदासी भय शोक इनको मिटा दो, विदा कर दो, और कहो कि देखो आइंदे हमारे यहां मत आना, तुम यदि आ भी जाओगे तो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। और संतों की कितनी सरल सरल बात, आप आनंद में मग्न रहो। क्या समझ करके, ओ हम प्रभु के हैं, प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु की बड़ी दया है। कोई कहे कि कहां दया है, तेरा कितना व्यापार था सब छीन लिया, क्या दया है, कि भाई यही दया है, तेरा वो कितना प्रेमी मित्र था जो चला गया, क्या दया है, बस यही दया है। जहां कोई कहे कि क्या दया है, तुम्हारे तो ये आफत आ गई, क्या तो ये आफत ही दया है, अब क्या बोले कोई। भगवान को वाह आपने बड़ी दया की है, अब आप मिलने वाले हो, इससे मालूम देता है आप मिलने वाले हो। जैसे बरसात आती है उससे पहले ठंडी हवा आती है, इसका मतलब बरसात आने वाली है। ऐसे ही आपकी लीला समझ में आ रही है, आपकी बड़ी कृपा है, अब बस अब आप आने वाले हो, ये देख देखकर खुश हो जाओ। इस खेल में कभी कमी मत आने दो, खूब आनंद में रहो। कोई कहे भगवान आए क्या, कि भगवान गए कब थे। भगवान गए कब थे, आनंद में रहते हैं, आनंद भगवान ही तो है। लोग कहते हैं आज खूब आनंद का अनुभव हुआ, सत्संग में खूब आनंद मिला, वो आनंद रूप से भगवान ही मिले। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के हैं 39वें, 7वें कट 39 है, श्लोक ही कौन है, सातवें 39 श्लोक पर लिख दिए, 7वें 39 श्लोक है ही नहीं, 7वें अध्याय में 30 श्लोक है लग लिए। आशय जितने प्राणी हैं मेरे बिना कोई नहीं है, मैं उनकी आत्मा हूं, ऐसा समझ करके भगवान का दर्शन करता रहे। कुछ भी कानों से सुनाई दे ये भगवान है, आंखों से दिखाई दे कि ये भी भगवान है, जीभ से खट्टा मीठा कि ये भी भगवान है, पागल हो जाओ। इस पागलपन में बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। इस प्रकार आप घर बैठे ज्ञानी बन जाओगे, कोई कष्ट नहीं होगा, कहीं आपको जाने आने की जरूरत ही नहीं है। अंदर से चिंता शोक हटा दिया, आनंद को लाकर बैठा दिया। जैसे अपने घर में किसी बुरे आदमी को निकाल दिया, अच्छे को लाकर बैठा दिया। क्यों बैठाया? कि ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं, निकाल दिया। ये मूर्खता प्रारब्ध से नहीं आती है। कोई कहे कि मूर्खता प्रारब्ध से है तो ये बिल्कुल गलत है। साकारवादी के सामने तो और भी भगवान सुगम है, क्योंकि साकार रूप भगवान का साकार रूप है। निराकारवादी भगवान के तत्व को निराकार, जैसे गंगा जी का जल है, उसमें कह दिया कि इसमें गंगा दो, अपने आप इस गंगा जी के जल में पवित्रता का अनुभव होता है। हमने साधारण जल समझ लिया, किसी ने कहा गंगा, अरे गंगा जल है तब तो लाओ हमको भी दे। यूं बोतल में जल रखा था, नहीं लिया। ऐसे ही सब में परमात्मा हो, तत्व से परमात्मा दिखे, लेकिन साकार रूप में तो इतना ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं। ये भगवान है, भगवान कहते हैं। भगवान तो और बदलने वाले नहीं, साकार रूप तो बदलता है कि ये तो लीला है, लीला तो बदलती है। भगवान मथुरा में अवतार लिए, ब्रज में गए लीला की, भगवान बहुत छोटे से थे लीला की, चार भुज का थे, फिर दो भुजा के हो गए, एकदम छोटे थे, फिर गोदी के लायक बने और फिर घुटने के बल चले। भगवान का शरीर बदला, भगवान बदलते हैं क्या? लीला बदलती है। ऐसे ही संसार बदलता है, ऐसे समझो। आप तो झूठे को सच्चा मानते हो, हम कहते हैं सच्चे को सच्चा मानो। जब मानना ही है तो सच्चे को सच्चा मानो। जब सच्ची बात कहते हैं तो ध्यान से देखने से पहाड़, पत्थर, वृक्ष ये सब भगवान के रूप दिखने लगेंगे। वास्तव में ये भगवान ही है। मिट्टी का घड़ा भी बनता है, सिकोरा भी बनता है, पर वो मिट्टी को छोड़कर थोड़ा ही है, भगवान को छोड़कर नहीं है। कुत्ता, गाय, गधा सभी भगवान है, केवल भगवान है, केवल भगवान है। नारायण नारायण नारायण, कितनी बढ़िया बात है, और कितनी सरल, कितनी मधुर है। अपना जीवन सफल हो गया है ऐसे महापुरुषों के वचन।